ओम शांति। अभी आदरणीय सकु दीदी जी भ्राता जी को तिलक लगाकर उनका स्वागत करेंगे। परम श्रद्धेय राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी हम सबके सामने उपस्थित है उनका परिचय कराने के लिए। आदरणीय विशेष रुपेश भाई जी हम सबके सामने आ रहे हैं, वो उनका परिचय कराएंगे।
ओम शांति। हम एक हाथ की ताली से आदरणीय भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बचपन से सुना करते थे, गुरु गोविंद दौ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियों मिलाए, राइट। समझ में नहीं आता था, लेकिन वास्तविक रूप में अब समझ में आता है। भ्राता जी का पाठ गोविंद से मिलाने का है, राइट। जब से हम सब ने ब्राह्मण जीवन में होश संभाला है, तब से जब जब बाबा मिलन के लिए आते हैं, तो बाबा मिलन से पूर्व जो मन की तैयारी है, उस मिलन के लिए जो एक पृष्ठभूमि है, वो तैयार करने में भ्राता जी की अहम भूमिका रहती है। तो एक गुरु का जो पाठ है हम सब के लिए आप प्ले करते हैं, जो गोविंद से मिलाते हैं, राइट। आप वो द्वार खोल देते हैं जिससे ईश्वर के प्रकाश को, उनकी शक्ति को हम स्वयं में समा पाते हैं। और वही टॉपिक आज का भी है कि कैसे हम प्रभु मिलन की उस सुंदर अनुभूति को, उस सुख को अनुभव कर पाए। आदरणीय भ्राता जी 1964 में बाबा के पास आए, ज्ञान से अवगत हुए, 68 में ही अपना संपूर्ण जीवन साकार बाबा के सम्मुख ही समर्पित किया। और तब से लेकर के न केवल सूर्य की तरह खुद को तपाया, हम हर एक सूर्य की तरह चमकना तो चाहते हैं, लेकिन चमकने से पूर्व तपना पड़ता है। आपने अपने जीवन को ज्ञान योग से तपाया, पश्चात वही प्रकाश, वही शक्ति हम सबको प्रदान कर रहे हैं। तो आदरणीय भ्राता जी से अनुरोध करूँगा कि आज के सुंदर विषय में, जो हम सब का विषय है कि कैसे ईश्वर से हम सुखद मिलन मनाएं, अनुभूति करें, उस पर प्रकाश डालें। आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। किस किस का मिलन हो चुका है बाबा से? अच्छा, रोज किस किस का होता है? सारा दिन कौन कौन करना चाहेंगे? पक्का? क्योंकि ये मिलन एक बार हुआ है, ये संगम बीत जाने के बाद तो इसकी फिर से इंतजार करनी पड़ेगी हम सबको। लोगों की तो कल्पनाओं से भी बाहर है कि भगवान इस तरह मिलता होगा। हम सब की भी यही कल्पनाएं थी कि एक बार उसके दर्शन हो जाएं, बस आत्मा तृप्त हो जाएगी। एक बार तुम्हें देख लें, तुम हो कैसे, बाबा ने मुरली में कहा एक दिन। तुम सब कहते थे मुझे, हे भगवान, हम एक बार आपको देख लें, आप हो कैसे। अब कैसे हैं पूरी तरह देख लिया है, अब उसको देखते रहें, सुख पाते रहें। ये मिलन का सुख सबसे बड़ा है, इसी को अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। न केवल हम अब करें मिलन या सवेरे करें, लेकिन हम अपने जीवन के, अपने विचारों को ऐसा सेट कर लें जो जब चाहे मिलन हो, जब चाहे वो हमारे पास आ जाएं, जब चाहें हम उनके पास जाकर मिलन कर सकें, बातें कर सकें, जुड़े रहें उनसे। ध्यान देंगे इस शब्द पर आप, हम बाबा से अधिक समय जुड़े रहें, बातें करते रहें, कुछ पूछते रहें, कुछ सुनाते रहें, उनके वाइब्रेशंस लेते रहें या उनके समीप बैठे रहें। भिन्न भिन्न विधियां हमें अडॉप्ट कर लेनी है उससे जुड़े रहने की, जुड़े रहें। ये जुड़े रहना ही उसका मिलन है। तो बाबा केवल नीचे आते थे और अब नहीं आते, ये सोच सोच कर थोड़े निराश नहीं होंगे? जब बाबा नहीं आते साकार में, बहुत बहुत पहले के भी दो बार के अनुभव हैं कि बाबा ने पूरा साल आने के लिए मना किया। दो बार हुआ ऐसा कि अगले साल बाप दादा नहीं आएंगे, लेकिन आए नहीं, पूरे वो सीजन ही नहीं चला। लेकिन एक सुंदर बात कह दी कि जो भी अनुभव करना चाहेंगे उसकी विधि अपनाएंगे, उनको वैसा ही अनुभव होगा जैसे बाबा के आने से होता है। तो मुझे तो इन सब चीज़ों में बहुत रुचि रहती थी कि ये सब करना, खूब करना है, उससे भी ज़्यादा अनुभव हो। तो कुछ विधियाँ हैं जो बाबा ने सिखाई हैं बाबा से जुड़े रहने की, उसका प्यार हमें मिलता रहे, बहुत जरूरी चीज है। आत्मा विशुद्धिकरण की ओर बढ़ती चले, प्योरिफिकेशन उसका होता रहे। कुछ सुंदर अभ्यास बाबा ने सिखा दिए हैं। मैं पहले दो अभ्यास पर आपका ध्यान दिलाऊं और वो आप करते रहेंगे तो ये मिलन होता ही रहेगा। पहला, दहेज से न्यारे होना। जितना हम निराकार बनकर रहेंगे उतना ही निराकार से मिलन होता रहेगा। करेंगे हम इसकी प्रैक्टिस। लेकिन दूसरी प्रैक्टिस है स्वमान की। जो बाबा को बहुत प्रिय हैं, बाबा की मुरली में आया पीछे, तब से मुझे इस पे और ज़्यादा ध्यान गया, 4 मास पहले आया होगा, स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ सवेरे सवेरे सवेरे, स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ। श्रृंगारे हुए हो जाते हैं हम यदि हम स्वमानों के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। मान लो उठते ही हमें याद आ गया जो गीत में था, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, तो एकदम दिमाग की नसें खुलेंगी, सुख मिलेगा, नशा चढ़ेगा, खुशी होगी, और इस चीज से बाबा का मिलन बहुत अच्छा होगा। तो स्वमान बढ़ाते चलें। साथ साथ ये भी याद रखें, स्वमान से दो बड़ी प्राप्तियां होती है, बहुत होती हैं पर दो मैं आज दे रहा हूं आपको, जो बहुत पहले बाबा ने सुना दी थी। स्वमान में रहने से अभिमान नष्ट हो जाता है, स्वमान में रहने से सम्मान परछाई की तरह पीछे आता है। परिवारों में आपको सम्मान नहीं मिलता, ओम शांति में चले गए, ये वो लोग बात करते हैं। इसको कुछ ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। भक्ति मार्ग में भी भगवान के मार्ग पे जो चला उसे लोगों ने बड़े कष्ट दिए। ज्ञान मार्ग तो उससे भी थोड़ा आगे है, पवित्रता की धारणा है, बहुत कुछ छोड़ देना पड़ता है गंदगी, तो गंदगी में रहने वाले लोग विरोध तो करते ही हैं। कई घरों में नॉन वेज खाया जाता है, आपने छोड़ दिया वो सब एंटी हो जाते हैं, समझते हैं नॉन वेज न खाना ये तो बुरी कल्चर है, इसको बुरा समझ रहे हैं, खाने वाले अपने को रॉयल मान रहे हैं, गंदगी, मन भी गंदा तो भोजन भी गंदा। मैं तो हंसी में क्या करता हूँ, जानवर खाते हैं तो बुद्धि भी जानवरों जैसी होती जा रही है, क्रुअल्टी भी बढ़ती जा रही है, मनुष्य में जो मानवता होती थी वो फीकी पड़ती जा रही है। सम्मान मिलेगा आपको बहुत स्वमान में स्थित रहने से, तो बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। चले अभी हम प्रैक्टिस करते हैं इन दोनों की, रेड लाइट। अपने को देखेंगे आत्मा चमकती हुई मस्तक मणि, मुझसे रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल रही हैं, मैं निराकार देह से न्यारी हूं। कुछ क्षणों के लिए फील करें देह है ही नहीं, केवल मैं। मैं एक महात्मा हूँ स्वीकार करेंगे और इस नशे में आ जाएंगे। मुझे स्वयं भगवान ने अपने महान कार्यों के लिए चुन लिया है, मैं उसकी नजर में बहुत महान हूँ, अब मैं अपनी नजर में भी महान हूं। उसने मेरे सिर पर हाथ रखकर, फील करें बाबा का हाथ मेरे सिर पर, मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं, मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं परम पवित्र हूं, पवित्रता की देवी हूँ। मैं वही हूँ जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, मेरे चारों ओर शक्तियों का आभा मंडल है, बैठ जाएं शक्तियों के आभा मंडल घेरे के बीच में। ओम शांति। बाबा से मिलन के लिए उसे प्यार होना बहुत आवश्यक है, सबका प्यार है उससे। प्यार ने ही यहाँ पहुँचाया है, प्यार ने ही उससे जोड़ा है, बहुत प्यार है उससे, ये प्यार टूटता रहता है, देहधारियों में प्यार बट जाता है, वस्तुओं में प्यार बट जाता है, कार्यों में प्यार चला जाता है, ये सब भी जरूरी है, अब सीख लेना है, कार्यों में प्यार भी रहे और उससे उपराम भी रहें, मनुष्यों से बहुत प्यार रहे लेकिन न्यारे भी हो जाएं, ये कला है, न्यारापन और प्यारापन, लव एंड डिटैच, दोनों का संतुलन जीवन में होगा तो बाबा के प्यार में वृद्धि होती जाएगी, प्यार में दिनों दिन वृद्धि करनी है, कैसे करनी है, उससे मुझे जो कुछ मिला है उसकी एक लिस्ट बना लेना, बहुत कुछ मिल गया, लेकिन ऐसा ना हो ये सोचते ही बहुत कुछ मिल गया ये भूल जाए कि क्या क्या मिला है, बहुत कुछ तो मिल गया पर क्या क्या, लिस्ट बनाना, पहले 10 लिखना पॉइंट, फिर बढ़ाना उनको, तो बाबा से मुझे ये मिला, बहुत प्यार बढ़ जाएगा, प्राप्तियों से ही प्यार बढ़ता है, किसी को बाबा ने नया जीवन दिया, किसी का कैंसर ठीक कर दिया, मृत्यु थी, किसी की अनहोनी ऐसी बीमारियां थी जिसका कोई इलाज नहीं दुनिया में, ठीक कर दिया बाबा ने, किसी के जीवन में उसने बहुत खुशी भर दी बहुतों के जीवन में खुशियां, और ज्ञान देकर भी हमें प्रकाश दे दिया, इस ज्ञान की हमें बहुत खोज थी, सत्य ज्ञान, क्योंकि जब तक सत्य ज्ञान न मिले कोई भी मनुष्य संपूर्णता की ओर नहीं बढ़ सकता, सत्य ज्ञान नहीं था संसार में कहीं भी, सत्य के लिए खोज थी, आपको खोज है अब सत्य के लिए, भाई लोग बताएं, बोलो सत्य की खोज है या पूरी हो गई, पीछे वाले बोलो, बहनों की पूरी हो गई, सत्य की खोज अपने का है वो अलग सब्जेक्ट है कि हम नई नई सत्य को प्राप्त करते रहें, लेकिन आप देखो संसार में अभी तो वो बात ही नहीं है, अब तो अगर किससे पूछा जाए कि किसी को कहा जाए कि आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली वाले आए हैं नहीं आए, दिल्ली वाले नहीं है, बुरहानपुर और पूना, किससे पूछा जाए पूना में कि भाई मुझे वेद चाहिए चारों, जरा खरीद के ला दो पैसे मैं देता हूँ, तो वो सारा पूना ढूंढ आएगा, उसको वेद नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, ना कोई पढ़ता ना कोई खरीदने जाता। मैं शंकराचार्य की किताब लेने गया एक बार दिल्ली में, उसकी बायोग्राफी उसकी जीवन कहानी, तो दिल्ली का एक सबसे बड़ा धार्मिक किताबों का स्टोर है, मैं उसे जानता था, मैं वहाँ गया, मैंने कहा भाई शंकराचार्य की जीवन कहानी चाहिए, उसने अपने नौकर को भेजा ढूंढो भी, नहीं मिली, 15 मिनट ढूंढ के वो आया, फिर मुझे कहा तुम ही चले जाओ भाई अंदर, उस नौकर के साथ मुझे भेज दिया कि ढूंढ लो, उसने ऊपर से कहीं से ढूंढ के निकाली, दीमक खा गई थी उसको, मैंने कहा क्या बात है शंकराचार्य इतना बड़ा महापुरुष उसकी किताब आपके पास नहीं, और मिली वो भी टूटी फूटी सड़ने को तैयार, कहा बाबूजी को लेने ही नहीं आता, आप ही आए हो कई साल में। सत्य के लिए द्वापुर से खोज चलती रही, अब देखो हमें संपूर्ण सत्य मिल गया, इसकी सबसे बड़ी पहचान है आत्मा तृप्त हो गई। कुछ मैं कौन हूँ ये जानना शेष नहीं रहा, भगवान कौन है और कहाँ है ये संपूर्ण रूप से जान लिया, कर्म कौन से गलत कौन से अच्छे, जिनको पुण्य कर्म समझ रहे थे वो तो पाप निकले, ये ज्ञान मिल गया। तो बहुत बड़ा खजाना मिला और इसके कारण भटकन समाप्त हो गई। भटकन बहुत थी भक्ति में, तृप्ति कहीं नहीं थी, हम सब भी भटके हैं। इसलिए बाबा से मुझे क्या क्या मिला है उसकी एक लिस्ट बनाना, रोज सवेरे कुछ दिन याद कर लेना एक बार, बाबा के प्यार में मन मगन हो जाएगा। एक बार रोज सवेरे 6 बजे तक, 4 से 6 के बीच, अपने मन को प्रभु प्रेम से भरना है सबको, तो जीवन प्रेम से भर जाएगा। ये जो प्रेम के विपरीत चीजें बुद्धि में समा गई हैं ये हट जाएंगी। चलें अब क्या किया करेंगे, मैं आपको एक छोटी सी झलक देता हूँ, रेड लाइट। अब हम बाबा के पास चलते हैं, बाबा को बुला लेते हैं और उनको शुक्रिया करेंगे। निमंत्रण दें, बुद्धि ले चलें ऊपर परम धाम, देखें सभी ज्ञान सूर्य शिव बाबा को। प्यार से निमंत्रण दें, हे सृष्टि के बीज, भाग्य विधाता, सर्वशक्तिवान, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठकर अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सामने, अपने सामने देखें बाप दादा को, दृष्टि दे रहे हैं। सच्चे मन से बाबा को शुक्रिया करेंगे, हे प्राणेश्वर, आपको पाकर हम बहुत सुखी हो गए। आपने आकर हमारी जन्म जन्म की भक्ति का फल दिया। आपने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान किया। हमें संसार में लाइट हाउस बना दिया। आपको बारंबार शुक्रिया। जीवन की इस यात्रा में हम अकेले थे, आप हमारे जीवन साथी बन गए, आप हमारी जीवन नैया के खिवैया बन गए। आपने हमें शक्तियां देकर बहुत शक्तिशाली बना दिया। हम माया के अंधकार में डूबे थे, आपने हमारे चित्त को प्रकाश प्रदान किया, हमें जीने की सच्ची राह दिखा दी, माया जीत बना दिया। आपको बारंबार शुक्रिया। आपने आकर हमारे सोए हुए भाग्य को जगाया, हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाया, अपना प्यार देकर हमें दुखों से मुक्त कर दिया, हमारे सारे मन के बोझ हर कर हमें बेफिक्र बादशाह बना दिया। आप हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आए, हमारे घर में मेहमान बनकर आए। टीचर बनकर हमें पढ़ाने आ गए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम और आप इतने समीप आ जाएंगे। आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। बाबा दृष्टि देकर गए अपने धाम। ओम शांति। इस तरह करेंगे रोज। शुक्रिया एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इंग्लिश में ग्रेटिट्यूड कहते हैं इसको। हम धन्यवाद दिया करें अपने शरीर को, धन्यवाद भगवान से मिलन के लिए, तुमने हमें बहुत साथ दिया है। अपनी बुद्धि को धन्यवाद, भगवान की शिक्षाओं को तुमने धारण कर लिया। इस संपूर्ण प्रकृति को धन्यवाद जिसने भोजन दिया, जीवन दिया, शरीर दिया, जल अन्न दिया, हवा दी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिनको बीमारी बहुत रहती हो वो प्रकृति को शुक्रिया करें, बीमारियां हटती जाएंगी। बाबा को भी शुक्रिया, परिवार वालों को भी, माँ बाप को भी। और एक चीज ध्यान से सुन लेंगे, जिन्होंने हमें 2500 वर्ष से, द्वापर से अब तक कभी भी हेल्प की हो, मदद की हो, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो सभी आत्माएं जो हमारे आसपास ही होंगी, अब हमारी मदद के लिए पुनः तैयार रहेंगी। जीवन में एक दूसरे की मदद चाहती है मनुष्य को, करनी भी चाहिए और दूसरों की जरूरत भी पड़ती है। शुक्रिया किया करेंगे। तो बाबा से मिलन के लिए अपने चित्त को शांत रखना बहुत आवश्यक है, चित्त को शांत कर लेना। क्योंकि मन अगर व्यर्थ संकल्पों में बह गया होगा व्यर्थ की चिंताएं अगर मन पे सवार होंगी, किसी दबाव में जीवन जीते होंगे, तो आत्मा उड़ान नहीं भरेगी। तो कभी हमें बाबा के पास जाना, और जैसे अब हमने किया, कभी घरों में उसका आह्वान कर लेना। लेकिन मन शांत होना बहुत जरूरी है। मन प्रसन्न हो तब बाबा से मिलन बहुत अच्छा होगा। कई लोग जीवन में खुश ही नहीं रहते, कामनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ा ली हैं, सदैव प्यासी नज़रों से दूसरों की ओर देखते हैं। कामना एक्सपेक्टेशंस प्यासा बना देता है मनुष्य को। यहाँ से मुझे कुछ मिले, यहाँ से कुछ मिले, यहाँ से प्यार मिले, यहाँ से अपनापन मिले, फिर वो होता नहीं है। मन भटक जाता है, कभी क्रोध आएगा, कभी और कोई बुराई जीवन को घेरने लगेगी, तो बाबा से दूर होते जाएंगे। याद रखेंगे, बाबा उन्हें बहुत प्यार करता है जो दूसरों को सुख देते हैं। बाबा उन्हें बहुत प्यार करता है जिनके अंदर सच्चाई है। बाबा का प्यार उन पर बहुत बरसता है जो पवित्र आत्माएं हैं, और फाइनली उन पर भी जो उसके कार्यों में बहुत मदद कर रहे हैं। तो हमें भगवान को अपने प्यार में बांधना भी है। मिलन होता रहे, सवेरे भी हो बहुत अच्छी तरह, तो उठकर अपने को सुंदर संकल्पों से चार्ज करेंगे ताकि नींद ना आ जाए। सवेरे का समय ऐसा ही होता है, ठंडी हवाएं, वातावरण शांत, घर में सब सोए हैं। यहाँ भी जो सो गए जग जाओ, जरा जगाओ भी दो चार को। हाँ, जग जाओ, जग जाओ, सीधे हो जाओ, जरा जग जाओ भी, तकलीफ है, सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। सवेरे अपने को जगाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो भगवान को आना पड़ता है जगाने के लिए, और वो आता तो है लेकिन करवट लेके फिर के चलो कल जाएंगे बाबा, कल उठेंगे, आज सो लेने दो जरा, जैसे आपके घर में छोटे बच्चे करते हैं ना, माँ उठाएगी वो फिर करवट बदल लेंगे, गुस्सा भी करेंगे, नींद आ रही है क्यों उठाया मुझे। जब तक आप ये ना बताएं कि स्कूल जाने का समय हो गया है, तब तक वो चेतन नहीं होते। सवेरे हम चेतन रहें, बिल्कुल जागृत अवस्था में आ जाएं, और जागृत करने वाली चीज हैं, ध्यान से सुन लेंगे, हमें जगाती हैं श्रेष्ठ स्मृतियां। जो बाबा रोज मुरलियों में हमें याद दिलाते हैं, तुम क्या थे, आज भी याद दिलाया, तुम देवी देवता थे बच्चे, तुम पवित्र थे, तुम विश्व पर राज करते थे, ये बात रोज आ रही है, तुम विश्व पे राज करते थे, तो हम जग जाते हैं। तो सवेरे अपने को जगाना है। घर में आपको कई कठिनाई होती होंगी, रात को देर से सोने का घरों में होता है, क्योंकि आप घरों में स्वतंत्र नहीं हैं। पति आया ही 10 बजे है, बच्चे और भी लेट कर देते हैं कभी आने में, आपको जगना पड़ता है। इस बात से ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, सहज भाव से जीवन जिएंगे। एक बहन की समस्या थी कि मेरा पति तो 12 बजे आता है, अब मुझे उसे गर्म खाना खिलाना है, एक तो कम से कम बज ही जाएगा, फिर सफाई धुलाई करते सोते हुए 1.5 कभी 2, अब मैं कैसे उठूं, मैं तो अमृत वेला होगा नहीं, प्रैक्टिकल बात है। मैंने कहा तुम कब खाना खा लेती हो? 8:30 बजे। पति से पहले खा लेती हो? खा लेती हूँ, मैंने उसे बताया हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ माताएं पति को खिला कर ही खाती हैं। पर उसने कहा मैंने छुट्टी ले ली है, मैं खा लेती हूँ। तो मैंने उसे कहा वो 12 बजे आता है ना, तुम 9 से 12:45 तक सो जाया करो। उसकी बात समझ में तो आ गई कि मैं इंतज़ार करती रहती हूँ, कभी सोती हूँ कभी जगती हूँ, उससे तो अच्छा कम से कम 2 घंटा भी सो लें तो थोड़ा शरीर रिलैक्स होगा, अच्छा हो जाएगा। तो सवेरे उठकर या तो थोड़ी सी अव्यक्त मुरली सुन लेना, आप सब करके देखो, अव्यक्त मुरलियाँ भी रिकॉर्डेड मिलती हैं, फ़ोन में आपके आ जाएगी, 15 मिनट 10 मिनट भी सुनो, बाबा की आवाज़ के वाइब्रेशंस बहुत ज़बरदस्त हैं, वो चेतन कर देंगे फटाफट। मैंने बहुत सारे सेंटरों में कराया था, एक बहन की ड्यूटी लगा दो, सवेरे उठते ही अव्यक्त मुरली चला दे, सारे सेंटर में स्पीकर लगे हों, गूंजने लगे बाबा की आवाज़, भूत भी भाग जाएंगे। ये मैंने कई जगह वहाँ भी कराया जहाँ भूतों का प्रकोप था, आजकल ये प्रकोप बढ़ रहे हैं। या गीत बजा लो बहुत अच्छे अच्छे, माताएं तो जब भोजन घर में बनाती हैं तो अपने घर में उस टाइम बहुत अच्छे वाइब्रेशंस बना दो, चाहे कोई क्लास सुन लो गीत बजा लो, आपको वैसे ही अच्छा अभ्यास होता है तो बाबा का आह्वान कर लो, उनसे बातें करो, तो भोजन बनाने का आपका समय बहुत सुंदर तपस्या में बीते और आप सबको याद हो बाबा की मुरली में आ गया। भोजन बनाते हुए और खाते हुए सभी सब खाएंगे, ये दुख भंजन भोजन है, भूलना नहीं कभी। मुझे भी उस दिन से याद रहने लगा, अभी साकार मुरली में ही तो आया था बीच में, ये दुख भंजन भोजन है, स्वयं भगवान ने कहा है। ऐसे नहीं भोजन आधे मन से खा रहे हैं, क्या बना दिया है आज, मजा ही नहीं आया। कई लोगों को खाने से पहले ही मनोस्थिति बिगाड़ लेते हैं, ऐसा है वैसा है, ये नहीं वो नहीं, ठंडा है, मिर्ची तेज है या बिल्कुल नहीं है, थोड़ा वातावरण को निगेटिव कर देते हैं। कोशिश करेंगे भोजन खाते और बनाते समय बहुत सुंदर वाइब्रेशंस रहें, बहुत फायदा होगा। दुख भंजन भोजन बना रही हूँ, जो इसे खाएगा उसके शरीर के दुख मन के दुख दूर हो जाएंगे, ये संकल्प कर लो। देखो संकल्पों का गहरा प्रभाव आपके भोजन पर पड़ेगा। तो हमें बाबा से मिलन करने के लिए, सब्जेक्ट तो ये बहुत बड़ा है, बुद्धि को स्वच्छ रखना होगा, अंडरलाइन करें इस बात को सभी। अगर आपको सचमुच प्रभु मिलन करना है सदा और इस जीवन का बहुत सुख पाना है तो बुद्धि को स्वच्छ करो। स्वच्छ है नहीं बुद्धि, बहुतों ने तो बहुत गंदगी भर ली है बुद्धि में, डस्टबिन बना डाला है अपनी सुंदर बुद्धि को, उससे बुद्धि भटकती है, मन भटकता है। और बुद्धि है हमारी ज्ञान का तीसरा नेत्र, थर्ड आई ऑफ विजडम, इससे हम आत्मा को देखते हैं, परमधाम को देखते हैं, बाबा को देखते हैं, उसकी किरणें आ रही हैं ये देखते हैं, ये नैनों से तो नहीं दिखती, ये तीसरे नेत्र से दिखती है। तो तीसरी आँख को स्वच्छ रखेंगे ताकि जितनी देर हम शिव बाबा को देखना चाहें देख सकें। एक छोटी सी ड्रिल आपको बता रहा हूँ, आप 5-7 मिनट भी बैठ जाएं अपने घर में टाइम लेकर। देखिए हमें योग अभ्यास के लिए, योग अभ्यास करना ही बाबा से मिलन है। हमें योग अभ्यास में मेहनत तो थोड़ी करनी चाहिए, एक बार आप जीवन में अच्छी तरह मेहनत कर लें, फिर पूरा जीवन के लिए योग सरल हो जाएगा। तो 10-10 मिनट अगर आप 4 बार बैठ सकें, लगन लगा दो। लंबा समय बैठने के लिए तो कई बहाने होते हैं मनुष्य को, 10-10 मिनट, 10-10 मिनट में अलग अलग अभ्यास। 2 बार तो सवेरे ही बैठ जाओ, 2 बार शाम को दिन में टाइम ना मिलता हो, नहीं तो 1 बार दिन में और 3 बार बाकी मैनेज करो, अपने अपने ढंग से सेटिंग करो। अलग अलग अभ्यास करेंगे, एक अभ्यास मैं आपको 4 अभ्यास सुना देता हूँ, लिख लें आप, और यही 4 अभ्यास अमृत वेले भी कर लेंगे। आत्मा पर स्थित होना, शिव बाबा पर स्थित होना, 10-10 सेकंड से शुरू करेंगे। 10 सेकंड आत्मा के स्वरूप को देख रहे हैं, एक कोई संकल्प रख लेना, जैसे मैं परम पवित्र हूँ। 10 सेकंड अपने स्वरूप को देख रहे हैं, 10 सेकंड बाबा के स्वरूप को देख रहे हैं, उसके बारे में भी चिंतन। योग के लिए और प्रभु मिलन के लिए ये याद रखेंगे सभी, सुंदर विचार मन में रखने हैं, विचारों को खत्म नहीं करना है, खत्म वो आपे ही होंगे, कम से कम संकल्प आपे ही हो जाएंगे, लेकिन योग का परम आनंद लेने के लिए सुंदर विचार मन में चलने चाहिए। एक अभ्यास देखना, ड्रिल कहते हैं इसको। दूसरा अभ्यास भी रूहानी ड्रिल है। मैं आत्मा, फिर मैं फरिश्ता, फिर मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में, फिर परम धाम में, फिर वापिस इस देह में। सवेरे हम करते हैं ये, रोज ऐसी ड्रिल करेंगे। तीसरा 10 मिनट 5 स्वरूपों का अभ्यास, 10 मिनट में 2 बार 3 बार 5 स्वरूपों का अभ्यास बहुत बड़ी प्राप्ति कराएगा। जिस स्वरूप को हम अपने सामने लाएंगे, उसी के संस्कार हमारे जीवन में आने लगेंगे। और चौथा अभ्यास बीज रूप, आप बाबा से किरणें लेकर संसार को सकास देना। बहुत अच्छा विजन है, मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ, सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ पर आ रही हैं, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। कभी बाबा से बातें करें, सुख से वतन में जाएंगे तो बाबा से बातें करेंगे। इस तरह सारा दिन हम व्यर्थ से बचे रहेंगे। बहुत ध्यान से सुन लें, मनुष्य क्या गलती कर रहा है, ये समस्या वो समस्या, ये बात वो बात, योग नहीं लगता, कहीं विघ्न आ रहे हैं, कहीं बीमारियां आ रही हैं। अब आप इसको रिवर्स करो, हम योग अभ्यास के लिए समय देंगे, स्थिति श्रेष्ठ होगी, परिस्थितियां आएंगी ही नहीं, कार्यों में बाधाएं पड़ेंगी ही नहीं, बीमारियां हो भी गई तो जल्दी डॉक्टर अच्छा मिल जाएगा, ठीक हो जाएंगे। योग चारों युगों की सबसे बड़ी शक्ति है, जिससे स्वर्ग की रजाई स्थापित होती है और मिलती है, जिसे प्रकृति पावन होती है, और इसी योग बल से ये दुखी दुनिया समाप्त भी होगी। तो बहुत बड़ी शक्ति हमारे पास है, वो आपके घर को स्वर्ग बना सकती है। देंगे समय अपने को, बोलो देंगे, 10-10 मिनट सवेरे 4 से 5 तो योग कर ही लें, किस दिन मिस हो जाए तो 10 मिनट जरूर करेंगे, 5 से 6 के बीच एक बार 10 मिनट कर लो, और 6 से 7 के बीच। शाम को ऐसे ही कर लो, दिन में काम काज, ऑफिस जाना हो, कुछ भी काम काज शाम को कर लो। आकर एक बार 10 मिनट योग में बैठो, आपकी सारी थकान मिट जाएगी दिन की। फिर सोने से पहले कर लो, 8 से 9 के बीच कर लो। हमें अपने को समय देना है, भगवान हमें समय दे रहा है। आज देखो कितनी निरहंकारिता की बात कह रहे थे, मैं बहुत दूर से नौकरी करने आता हूँ। टीचिंग जॉब होती है, दूर जाना पड़ता है 1 घंटे यात्रा पर, मैं तो सबसे दूर से आता हूँ, पर सबसे जल्दी आ जाता है ना, उसको घंटा लगाना नहीं पड़ता, बाइक की ज़रूरत नहीं, कार की ज़रूरत नहीं। तो बाबा कैसे प्यार देता है अपने बच्चों को, मैं तुम्हारी सेवा में आता हूँ, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, बाबा ये कह देता है। लेकिन नहीं, वो तो सर्वोच्च शक्ति अपने बच्चों को प्यार देता है, सिखाता है, तैयार करता है। हम भी अपने को समय देंगे, अपने को समय देना है, यहाँ से पक्का करके जाना। तो हम समय देंगे, बाबा के पास भी हमारे लिए समय होगा। चले अब ट्रैफिक कंट्रोल का समय आ गया। ओम शांति। अब हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। सिटिंग चेंज करनी भाई, करनी थोड़ी। पंखा थोड़ा चला देना, पंखा थोड़ा दूर रख के चला।
शुरुआत मैंने की थी गुरु गोविंद से। गुरु का वास्तव में अर्थ होता है अंधकार को दूर करने वाला। और जब हमारे मन में कोई प्रश्न, कोई दुविधा, कोई संशय की स्थिति आती है तो मन भी जैसे अंधकार से भरने लगता है। तो भ्राता जी, हम सबके ही नहीं बल्कि लाखों आत्माओं के मन में उठने वाले द्वंद, प्रश्न और संशयों को, जो एक अंधकार पैदा करते हैं, उसे भी दूर करते हैं, चाहे कॉल के द्वारा, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, टेलीविज़न हो, या फिर मन की बातें हो, उन सब के माध्यम से। इसीलिए गुरुजी नाम को आप सार्थक करते हैं और इसीलिए बहुत प्यार से भ्राता जी को सभी गुरु जी भी कहते हैं। जब किसी का कॉल आता है, कहते हैं हमें गुरु जी से बात करनी है, मैं कहता हूँ भ्राता जी हैं, तो भ्राता जी नहीं, फिर गुरु जी से और आगे बढ़ जाते हैं, हमें बाबा जी से बात करनी है। तो आप सचमुच बाप समान हैं हम सब के लिए, जो हम सबको प्रेरित करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जहाँ कहीं भी हम आध्यात्मिक रूप से उलझ जाते हैं या मन में प्रश्न उठते हैं, उनका सहज सरल समाधान आपसे हमें सतत प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात जो प्रारंभ में भी मैंने कही कि प्रभु मिलन की जो सुखद अनुभूति है, जो आप हमेशा ही हम सबको कराते हैं, उसके लिए हम सब दिल से बहुत बहुत आपके आभारी हैं। एक हाथ की ताली तो उसके लिए ज़रूर, भ्राता जी के लिए, जो सहज सरल और सुखद अनुभूति के विधियां हम सबके सम्मुख रखते हैं। भ्राता जी, प्रश्नों की ओर लिए चलता हूँ आपको, ढेर सारे हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, ज्ञान बुद्धि में है पर उसे दिल तक कैसे पहुँचाना है?
दिल का संबंध भावनाओं से होता है और भावना मनुष्य को अनुभवों के बाद पैदा होती है। कुछ लोगों में भक्ति भाव पहले से ज़्यादा रहा तो भगवान को जिस रूप में भी माना उसमें भावना बहुत आ गई, भावना से उन्हें सुंदर अनुभव होने लगे। यहाँ ज्ञान हमारी बुद्धि में रहता है पर ज्ञान के साथ अगर प्रेम भी बहुत होगा तो दोनों मिलके भावनाओं को जन्म देंगे। इसे ही दिल कहा जाता है, जिसमें प्यार हो और भावनाएं हो। तो सभी, जैसे हमने छोटी छोटी विधि की, प्यार बढ़ाएंगे, शरीरीपन के अभ्यास से बाबा से प्यार ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। ज्ञान को अपने अनुभवों में लाएंगे। कोई एक माता पिछले ग्रुप में बहुत अच्छी बात कह रही थी, उसने यही शब्द शुरू किए कि बिना अनुभव के भावना नहीं बनती थी। मुझे एक वंडरफुल अनुभव बीमारी में बाबा का हुआ, उस दिन से बहुत भावना हो गई बाबा से। तो दिल का प्यार और अनुभव ये बहुत जरूरी है ज्ञान को दिल तक पहुंचाने के लिए। और जो मैंने आपको एक बात कही, स्वच्छता, उस पर बहुत ध्यान देंगे आप। देखो स्वच्छ, वैसे भी घरों को भी आप स्वच्छ कर दो कितना अच्छा लगता है, अच्छे कपड़े पहन लें कितना अच्छा लगता है। बुद्धि को स्वच्छ करेंगे तो ज्ञान जो बुद्धि में है वो अनुभव में आ जाएगा।
आज की मुरली में बाबा ने कहा, पिछाड़ी में आने वाले भी थोड़ी मेहनत कर पुरानों से आगे जा सकते हैं। तो हम अभी पिछाड़ी में आए हैं, तो ये थोड़ी मेहनत क्या है,
क्या है
जिससे हम पुरानों से भी आगे निकल जाएं?
रुपेश भाई जब समर्पित हुआ ये छोटा था और ठीक यही प्रश्न मेरे से करता था, हम बहुत लेट आए हैं, अब थोड़ी सी मेहनत क्या करें जो आगे निकल जाएं। निकल गए ना रुपेश भाई, अब आप ही बता दो क्या थोड़ी मेहनत की आपने,
मार्गदर्शन आपने ही किया।
ऐसे कई सारे भाई, भाइयों को मेरे से ज्यादा रहता कनेक्शन था, तो आए और ये प्रश्न करते ही थे, थोड़ी मेहनत है ऐश्वर्यी होने की, बिल्कुल छोटी सी मेहनत है, इसको सीरियसली नहीं लेना है, इतना ही आप अभ्यास शुरू करें, मैं आत्मा हूँ ये मेरा शरीर है, ऐसे शरीर मैंने कितने लिए और छोड़े हैं, एक चिंतन में ले आए इसको, इससे दिव्यता आती जाएगी जीवन में। दूसरी छोटी सी मेहनत है स्वमान की, उसमें भी कोई एकाग्र करें टाइम निकालें उसकी जरूरत नहीं होती है। सहज ये दो मेहनत, बाकी हमें कुछ धारणाओं पे जरूर ध्यान देना है। जैसे चाहे आप कल ही ज्ञान में आए हैं, अपने अंदर छुपे हुए मैंपन को पहचानने लगे और उसे हटाने लगे, मैं और मेरा, ये आगे बढ़ने में सबसे सूक्ष्म बाधाएं हैं, दोनों पे ध्यान दे पहचान लें। मैं एक कहानी सुनाया करता हूँ, वो बहुत काम आएगी आपको। पार्वती को इच्छा हुई कि हम झोंपड़ियों में ही रहते हैं, तुम सबको महल दे देते हो, हमारे लिए भी एक सोने का महल बनाओ। उसने बहुत समझाया कि हम तो सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, सोने के महलों में हमें नहीं रहना है, अपनी झोंपड़ी अच्छी है। पार्वती नहीं मानी, चलो कुबेर को बुलाया, भाई जितना भी चाहिए दे देना। और विश्वकर्मा आप जानते हैं, नाम सुना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जल्दी सोने का महल बना दो। महल बन के तैयार हो गया, अब गृह प्रवेश की बारी आई। तो रावण ही उस समय सबसे बड़ा पंडित और शिव का भगत था, कहा रावण को भी बुला लो गृह प्रवेश के लिए। रावण आ गए, गृह प्रवेश की सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली। महादेव जी ने पूछा, भाई अब दक्षिणा का समय आ गया है, बोलो तुम्हें क्या दक्षिणा चाहिए। रावण के मन में था कि शिव इस महल में रहेंगे, मैं भी यहीं रहूं, तो प्यार था ना बहुत उससे, दोनों साथ रहेंगे और क्या चाहिए मुझे। उसने कहा, महादेव जी ये लंका ही मुझे दे दो, ये सोने का महल ही मुझे दे दो। महादेव जी मुस्कुराने लगे पार्वती की ओर, बोली कहा नहीं था हमारे भाग्य में झोंपड़ी में रहना ही है। माताओं की ज्यादा इच्छा रहती है ना, तो एक सुंदर बात महादेव जी ने रावण को कही। अभी महादेव जी चलने लगे, रावण ने कहा आप क्यों जा रहे हो, कहा जहाँ मेरा मेरा है वहाँ मेरा वास नहीं है, इसलिए हम चले। शिव बाबा की भी उपस्थिति वहीं रहेगी जहाँ मैं और मेरा नहीं होगा, बस इतना काम करेंगे, संतुष्ट आत्मा बन जाएंगे, दो वो प्रैक्टिस करेंगे तो योग बहुत अच्छा लगेगा, तेजी से आगे बढ़ेंगे। बाकी ध्यान देना है अपने को फास्ट गति से चेंज करते चलो, ये नहीं किसी संस्कार के अधीन हो गए, उनकी सबकी विधि है हमारे पास, पांच स्वरूपों के अभ्यास से संस्कार बदल जाएंगे। और एक ही सुंदर बात याद रख लो, विचार बदल देंगे हमारा संसार बदल जाएगा। तो मुरलियों से रोज अपने विचारों को बदलते चलेंगे और सहज हम आगे बढ़ेंगे।
सोते हैं तो नींद नहीं आती और योग में बैठते हैं तो नींद आती है,
कितनी अच्छी बात है। सोते हैं तो नींद नहीं आती, प्रभु मिलन करते हैं तो सोते हैं। देखो इस पे मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, किसी का मन और भारी हो जाएगा तो नींद और ज़्यादा आने लगेगी। आप पुण्य कर्म करें ज़्यादा, ये पाप का दबाव है पूर्व जन्मों के, पाप कर्मों का दबाव है दिमाग पे जो प्रभु मिलन का सुख नहीं लेने देता। मुरली चलेगी तो फट से सो जाएंगे, हर रात को नींद करने के लिए सोने से पहले 108 बार लिखना शुरू करो, मैं एक महान आत्मा हूँ। एक और चीज करेंगे, क्षमा याचना, जिनको भी हमने कष्ट दिया है, जिनके संबंध से पाप बहुत कर लिए, मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहती हूँ, आप प्रसन्न हो जाएं। तो जो बैड एनर्जी दूसरों से आ रही है वो कट जाएगी, फ्रेश हो जाएंगे। एक और बात, थोड़ी वो मेहनत की है, बहुत आत्माएं किसी ना किसी प्रेशर को लिए हुए जीवन जी रहे, दबाव दिमाग पे कोई दबाव लिया हुआ है सदा, इस प्रेशर को ज्ञान के द्वारा हटाते चलो, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। अब बाबा ने ज्ञान दे दिया है, देखो मैं वो बात जो बहुत सुनाता हूँ, मेरी प्रिय बात रही, जब से बाबा ने बोला था मुझे उसी क्षण से पक्की हो गई थी, बच्चे अपने मन के बोझ मुझे दे दो, फिर बहुत अच्छी बात कही, जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा। समझ में आया वो क्या चाहता है, हम क्यों नहीं इतना छोटा सा काम करते। बहुत मजा आया जीवन में, जीवन में दिमाग पर कोई दबाव हो आपके, बहुत कुछ होता है हर एक के जीवन में, ऐसा नहीं कि दबाव ऐसे ही है, बहुत कुछ हो रहा है आजकल संसार में, दबाव आता है, लेकिन ज्ञान की ऐसी बातों के द्वारा इस प्रेशर को हटाते चलो, अपने को हल्का करते चलो, फ्रेश करते चलो। भगवान हमारा साथी है, उसे गुड फ्रेंड बना लो अपना, उसको देते चलो बोझ, तो फिर ये नींद की समस्या खत्म हो जाएगी। और एक काम, सवेरे खाली पेट अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो 10 मिनट, जानते हैं ना ये, तो ब्रेड को ऑक्सीजन जाने लगेगी। ये बात वो बताते नहीं या उन्हें पता नहीं, ब्रेन को इस प्राणायाम से ऑक्सीजन जाती है, खुल जाएगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी और फिर योग में भी आप फ्रेश रहेंगे।
यज्ञ में अपना धन सफल करना चाहता हूँ, कहाँ करूँ, बाहर सेंटर्स पर कितना करें और यज्ञ में कितना करें?
जहाँ आपकी जितनी भावना हो वहाँ उतना ही कर दो, परेशानी कोई बात नहीं। बात इस चीज की है कि धन सफल करने के पीछे आपके चित्त में क्या भावना है। मैं थोड़ा ओपन कर देता हूँ, कई लोग अपना धन सफल करते हैं सेंटर में, फिर बहनों से बहुत कुछ चाहते हैं, बहन हमारा सम्मान करे, हमें सबसे परिचित कराए, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कईयों में एक और थोड़ी खराब बात आ जाती है, सेंटर हमने बनाया है, अब मैं जो कहूँ वही बहन जी करे, मैं बहनों का करता हूँ उसके पैसे सारे लौटा दो। किसी की अधीनता में इस देवियों को रहना नहीं चाहिए, इस देवी समझ रहे हैं ना, कोई और रह ले तो रह ले, आपके चरणों में तो संसार का सारा धन आने वाला है, ये गलत है। इसलिए एक हाथ दे दूसरे को पता ही ना चले, जहाँ जरूरत है, यज्ञ में भी अब बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 साल बहुत कुछ खाली हो गया है। अभी आप सोचो इतने बड़े मकान, उनको मेंटेन करना बहुत पैसा लगता है, आना कम हो गया था, इसलिए अगर कोई अपना सफल करना चाहता है सेंटर में भी करे, लेकिन महायज्ञ में भी करे, इसकी इस समय विशेष जरूरत है।
कोरोना काल में बंद था इसलिए कोई नहीं आता था, लेकिन अभी आने में आनाकानी करने लगे हैं, और सेंटर की मुरली अभी तक भी ऑनलाइन चल रही है, तो वो सबको मिलती भी नहीं है। तो सेंटर पर स्टूडेंट्स फिर से आना शुरू करें, इसके लिए क्या करें?
आनाकानी तो होने लगी, क्योंकि घर में सोने की आदत पड़ गई, मोबाइल पे मुरली सुनने की आदत पड़ गई, अब घर में ही माल मिल रहा है, छोड़ो, थोड़ा सोएंगे थोड़ा सुनेंगे चल जाएगा काम। बहनों को इसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, कई बहनों ने तो कोरोना काल में भी पालना चालू रखी थी फ़ोन के द्वारा भी, ताकि कनेक्शन बना रहे। जो ऐसा नहीं कर पाए, बहनें भी कई जगह डर गई या उनको भी कोरोना हो गया, तो अब आप सब एक काम करेंगे, सभी टीचर बहनों के लिए है संसार की, सवेरे 15 मिनट योग अपने सभी भाई बहनों के लिए करेंगे, और उनका आह्वान करेंगे कि आ जाओ फिर से सेवा केंद्र पर, और एक विजन देखेंगे कि हमारा क्लास, मुरली क्लास, हमारा हॉल फुल है। विजन देखेंगे, आह्वान करेंगे, योगदान करेंगे, और चित्र बनाएंगे मन में, भर गया है हॉल 2 मास में ही, तो धीरे धीरे आने लगेंगे। और चौथी बात, आत्माओं से माइंड टू माइंड बात करें, मन से बात करें, उन्हें सबको आत्मा देखो, जैसे आपके सामने हैं सब भाई बहने आत्माएं हैं, और उन्हें संकल्प दो, समय तेजी से बदल रहा है, अभी बाबा से सब कुछ लेने का समय है, ये समय बिता दिया तो आने वाला समय बहुत भारी होगा, इसलिए चुस्त हो जाओ, बाबा से सब कुछ लेने के लिए आओ, जैसे आप आवाज दे रही हैं मन से आओ, तो ये वाइब्रेशंस उनको पहुंचेंगे, और जल्दी ही जो आनाकानी कर रहे हैं वो आने लगेंगे।
पास्ट की परछाई आगे बढ़ने में बार बार विघ्न रूप बनती है, डिस्टर्ब करती है, तो ऐसे समय खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग करें?
पास्ट का दबाव, पास्ट की स्मृतियां आगे नहीं बढ़ने देती, जैसे रेस चल रही हो, रेस चलती है ना 100 मीटर, 400 मीटर, एक किलोमीटर की भी, कई लोग दौड़ते हैं एक साथ, लड़कियां भी दौड़ती हैं, लड़के दौड़ते हैं, मान लो कोई धावक, कोई एथलेटिक पीछे मुड़ के बार बार देखता है, तो वो आगे जाएगा या पीछे रह जाएगा? उसको तो कोई मेडल मिलने वाला नहीं है। जो केवल मंजिल को देखते हैं वही मंजिल पर पहुंचते हैं, इसलिए पास्ट को भूलने के लिए एक तो मैंने कहा आपको क्षमादान दे दो, क्षमा याचना भी कर लो, क्षमादान भी दे दो। क्षमादान देने के लिए थोड़ी ताकत चाहिए आत्मा में। कईयों को मैं कहता हूँ ना, वो कहती हैं, बहनें खास कहती हैं, हम इसे क्षमा नहीं करेंगे। मैंने कहता हूँ फिर परेशान रहोगी, कहा क्षमा नहीं करना है, इसको तो हम जेल में देखना चाहते हैं, इसको तो हम फांसी पे लटका हुआ देखना चाहते हैं, ऐसी सुख भावनाएं रहती हैं नहीं। शक्तिशाली व्यक्ति दूसरे को क्षमा कर देता है, तो वो जो भारीपन है ना मन में पास्ट का, उसको तो हटाना है ना। हटाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े कर लेना चाहिए, क्षमा कर दो, सुखी रहो, अब हम बड़े हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, अब बाबा ने हमें बड़े बनाया है, हम तुम्हें क्षमादान देते हैं, सुखी रहो। और पास्ट बिल्कुल भूल जाए, पांच स्वरूपों का अभ्यास 3 मास कर लो, 5 बार सवेरे 5 बार सोने से पहले, तो ये छपता जाएगा, वो डिलीट होता जाएगा, उसका इफेक्ट कम होता जाएगा।
आज भी बाबा ने कहा पवित्र बनो, और बाबा इतना बोलते हैं तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते, लेकिन यही एक मुख्य धारणा है जिसमें परेशानी होती है। तो इस धारणा को कैसे सहज जीवन में लाएं? कई बार ऐसा देखा जाता है कि उम्र बहुत ज़्यादा भी है फिर भी विकार परेशान करते।
देखिए हम सभी आत्माएं, ये किसी एक दो की बात नहीं है, सभी आत्माएं द्वापर युग से विकारों में रत रही, उसका इफेक्ट सभी के ऊपर है। कोई साधनाएं करके उसको ढीला कर देते हैं, जो साधनाएं नहीं करते तो इन वासनाओं का फोर्स बढ़ता जाता है, क्योंकि कलयुग में बाबा के शब्दों में काम की आग लगी हुई है, उसका सेक आने लगेगा। इसलिए जो ये हमें छोटी साधनाएं हैं, ऐसरीरीपन, योग युक्त अवस्था, सवेरे उठना, मुरली सुनना, ज्ञान का चिंतन करना, इनसे प्योरिटी की पावर बढ़ती चलेगी। ध्यान ये रखना है कि अगर थोड़ा बहुत हम कहीं कमज़ोर पड़ते हों तो जल्दी ही अपने को जगा देना है। अपनी कुछ चीज़ें लिख कर रखो जिनको पढ़ते रहो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पानी चार्ज करके पीना है इस संकल्प से, और देव कुल की आत्मा हूँ, वही 5 स्वरूप अभ्यास करने हैं, तो प्योरिटी स्ट्रांग बनेगी। प्योरिटी निश्चित रूप से एक बड़ा सब्जेक्ट है, कईयों के लिए भारी भी है, माया से इसी से हार खाती आई हैं आत्माएं बहुत बहुत। हमने तो अपने मधुबन के जीवन में देखा कितने गए कितने आए। कुमारों को तो मैं कहता था एक साथ बहुत आते हैं और फिर एक साथ ही बहुत चले जाते हैं, एक साथ संख्या बढ़ती है फिर घट जाती है। कलयुग का प्रभाव भी है, सोशल मीडिया का प्रभाव भी है, गंदी चीज़ें जेब में ही पड़ी हैं सबके। हमारी एक बहन कहा करती थी इस मोबाइल को सबने अपनी अपनी जेब में गुंडा रखा हुआ है। रुपेश भाई को पता है गंदगी तो है ही, इनसे बचेंगे, साधनाओं पे ध्यान देंगे, ये बहुत अच्छी तरह जान लें। अगर प्योरिटी के सब्जेक्ट को अच्छा बनाना है तो 4 घंटे रोज हमारी योग साधना होनी ही चाहिए। वो बैठकर ही जरूरी नहीं है, वो कर्म में भी स्मृति स्वरूप होंगे तो स्मृति से हमारी स्थिति, हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी।
क्या बाप दादा अब साकार में नहीं आएंगे? हम आए और अव्यक्त पाठ पूरा हो गया।
हम आए और अव्यक्त पाठ पूरा हो गया। क्यों हो गया? कई लोग सोचते हैं हम इतने खराब हैं क्या कि हमारे आते ही भगवान ने आना ही छोड़ दिया। नहीं, बाबा समय को देखते हुए अब हम सभी आत्माओं को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, सूक्ष्म विधियों की ओर ले चलना चाहता है। जो बाबा ने कहा ना, तुम सबको तो रिफाइन ज्ञान मिल रहा है, अभी अव्यक्त में ज्ञान सचमुच बहुत सूक्ष्म हो गया है। तो बाबा का आने का पाठ तो पूरा हो गया, सब जानते ही हैं, क्योंकि बाबा को हम सबको अब साक्षात्कार मूर्त बनाना है। इसलिए इस बात को इस तरह ले लें कि बाबा अब नहीं आ रहे हैं तो हमें अपने को इतना योग्य बनाना है कि जब बाबा का आह्वान करें उसकी उपस्थिति को पाएं। पॉजिटिव ले लो इसको। तो बाबा का आना और ना आना ये प्रश्न ही समाप्त हो जाएगा। आपको फील होगा बुलाया और वो आ गए, बहुत अच्छी अनुभूति होगी। तो इसको निगेटिवली सोचकर अपने को निराश नहीं करना है। जब आ गए तभी अच्छा है। हिंदी में कहावत है, जब जागे तब हुआ सवेरा।
कई लोग ये कह रहे हैं कि बाबा वहाँ नहीं, हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो आओ अब हम बाबा से आपको मिलाते हैं। तो मन में एक आता है कि चलो एक बार देख के आते हैं। और वो तर्क ये देते हैं कि बाबा ने कहा है कि अंत तक समय तक साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ ही आएंगे। तो जब बाबा ने कहा है तो वो गलत कैसे कहे?
देखिए, बाबा ने कह दिया था मैं मधुबन के अलावा कहीं नहीं आता। ये सब माया के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। मैंने भी देखा, मैंने उनसे पूछा कि कोई बाबा के द्वारा चलाई गई गुहे मुरली तो लाओ, कोई नहीं है, बस आ गए, बाबा से मिलन हो गया, बच्चे खुश राजी हो, ये कुछ नहीं होता। और मैं खोल के ही बता देता हूँ, जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो भ्रम में हैं, क्योंकि बहुत जगह इस तरह बाबा आते रहे और चले गए, सेंटर के सेंटर नष्ट करके चले गए। महाराष्ट्र में भी एक हुआ था, पूना वालों को पता हो, बॉम्बे में ही हुआ, बॉम्बे के आसपास, नाम भी मुझे पता उसका, शोर मच गया, बाबा आ रहा है, भागने लगे लोग। एक मास तक बाबा आया, फिर सबको लेकर भाग गया। इसलिए इन भ्रमों में नहीं जाना है, अपनी स्थिति को योगयुक्त बनाना है।
बाबा ने आज कहा दुखों के पहाड़ गिरेंगे, तो ये दुखों के पहाड़ हम पर गिरेंगे या दुनिया वालों पर गिरेंगे?
हम होंगे सभी को पहाड़ से नीचे निकालने, बाहर निकालने वाले। आप पहाड़ के नीचे दब नहीं जाएंगे, आप रेस्क्यू फोर्स रहेंगे। बचाने वालों की फोर्स होती है ना, सबको दुखों से मुक्त करने वाले। दुखी होना न होना ये मनुष्य के अपने हाथ में है, है या नहीं है हाथ में। ज़्यादा सोचने वाले दुखी रहते हैं, सब कुछ कल्याण की सोचने वाले सुखी रहते हैं। तो इसलिए अपना पार्ट निश्चित कर लो, मुझे वाइब्रेशंस देकर सभी को दुखों से मुक्त करना है। संसार में दुखों के पहाड़ गिरेंगे, अभी भी कोरोना में भी गिरे थोड़े थोड़े, अभी थोड़े पत्थर ही गिरे हैं, पहाड़ नहीं गिरे, लेकिन होगा हाल बहुत खतरनाक। हमारी स्थिति अच्छी होगी तो हम बिल्कुल मुक्त रहेंगे, बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित।
आज भी बाबा ने कहा मौत सामने खड़ा है, टाइम बहुत कम है, और बाबा प्रारंभ से कहते आ रहे हैं कि अगली दिवाली नहीं आएगी। तो अभी से लेकर सतयुग के प्रथम दिन तक कितनी अवधि है और स्वरूप क्या होगा भविष्य?
कितनी दिवाली और आएंगी ये जानना चाहते हैं। बाबा ने पहले दिन से कहा था बच्चों अगली दिवाली नहीं आएगी, मौत सामने खड़ा, जल्दी करो। आप सोचो अगर बाबा ऐसा न कहते तो जो 400 भाई बहने आए थे वो आते? वो कह देता 100 साल पड़े हैं, तो कहा अगला जन्म लेके ही आएंगे, छोड़ो इस जन्म में एंजॉय करने दो। मनुष्य की मेंटलिटी है ना। और दूसरी बात ये कि ये संपूर्ण बनने की यात्रा काफ़ी लंबी है, इसमें समय जाता है। इसलिए बाबा ने सबको लंबी यात्रा कराई, भिन्न भिन्न अनुभव कराए, उससे भी हम सब गुजर रहे हैं। अब बिल्कुल आपको स्पष्ट हो संगम युग कितने साल का है, 100 साल का, और वो पूरा हो जाएगा 2036 में। बस विनाश और स्थापना ये तब तक ही चलेगी, उसके बाद देवताओं का जन्म होगा और देवयुग की ओर हम आगे बढ़ेंगे।
मुझे रोज़ की दिनचर्या में कभी कभी तो स्थिति बहुत अच्छी रहती है और कुछ परिस्थिति आई कि स्थिति एकदम नीचे आ जाती है। फिर कितना भी करो, बाबा को लेटर भी लिखो, लेकिन वही विचार आते रहते हैं, वो स्थिति वापस नहीं बन पाती।
इस समय एक बड़ी चीज़ हो रही है इस सृष्टि में, कि ज़्यादा सोचने की आदत का प्रकोप होता जा रहा है, सभी के ब्रेन की शक्ति बहुत कमज़ोर पड़ती जाती है, इसलिए एक बार स्थिति बिगड़ गई फिर उठना बहुत मेहनत का काम हो जाता है। इसलिए कम से कम ज्ञान की 16 पावरफुल पॉइंट्स अलग से लिख के रखना, जो आपकी स्थिति को अचल अडोल बनाए, जो आपकी स्थिति को बिगड़ने दें न दें। तो ज्ञान के बल से हम ऐसा जीवन बनाएंगे कि परिस्थितियां कम से कम आए, फिर भी आती हैं, क्योंकि पूर्व जन्मों के हिसाब किताब भी अपना पूरा इफेक्ट लेकर चल रहे हैं। ये वो समय है जब पूर्व जन्मों के सभी के कर्म एक साथ वार करते जा रहे हैं और ये वार बढ़ते जाएंगे। इसलिए कुछ सिद्धांत अपने जीवन के बना लो, बाबा मेरे साथ रहता है इस बात को पक्का कर लो, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ये संकल्प पावरफुल कर लो, तो स्थिति थोड़ी बिगड़ेगी जल्दी समझ जाएंगे।
ब्रदर जी, कुछ कृषक भी हैं हमारे इस ग्रुप में, इन्होंने पूछा है अब सब्जियों में बहुत पेस्टिसाइड हमें यूज़ करना पड़ता है तो उसके कारण बीमारियां बढ़ रही हैं, तो क्या उसका बोझ हम पर आएगा? और दूसरा ये कि प्याज आदि यदि हम नहीं लगाते हैं नुकसान होता है, और नहीं हम लगाते हैं बोते हैं, मतलब लगाते हैं तो फिर एक पाप जैसा भी फील होता है।
अब देखिए कलयुग के अंत में पाप ही पाप है, पुण्य कहाँ से आएगा? आप खेती में ये खाद नहीं डालोगे, पेप्टिसाइड इंग्लिश में कहते हैं पेप्टिसाइड्स, तो जमीन की जो उर्वरक शक्ति है वो तो नष्ट होती जा रही है और लगभग नष्ट होने को आई है। इसलिए ये सब डाल के अन्न सब्जियां दी जा रही हैं संसार को। अगर ये भी न डालें, आप जानते हैं जो किसान हैं, बैंगन आपने बोए कीड़े लग जाएंगे, गोभी बोई सब खत्म हो जाएगी, गेहूं बिल्कुल छोटा हो जाएगा, गन्ना सूख जाएगा। इसलिए जैसा समय वैसा करना ही पड़ेगा। रही बात प्याज आदि खेती करने की, मेरे पास आए थे भाई, क्योंकि वहाँ खेती ही प्याज की होती है तो उसको करने में हर्जा नहीं है। प्याज खाने वाले आपका नहीं खाएंगे, वो तो किसी और का खाएंगे, इसलिए उसमें आपका दोष कोई नहीं है।
राधा जी, ज्ञान की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतनी सारी बातों में कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या करें और क्या ना करें। क्या आप हमें कुछ की पॉइंट्स देंगे जिस पर हम फोकस करें, जिसमें सारी ही ज्ञान की बातें आ जाएं और हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो
मैंने
जाए?
बता दी हैं वो सब बातें, शरीरी बनने का अभ्यास, स्वमान का अभ्यास, मैं और मेरे के त्याग का अभ्यास, अपने विचारों को महान रखना, बस इतना ही करना है। उसी के लिए बाबा मूल्यों में अलग अलग बातें करते हैं, वो अलग हैं नहीं, वो सब आत्मोत्थान के लिए हैं। किसी को कोई बात बहुत पावरफुल्ली काम करती है, किसी को कोई और बात, सबको सारी बातें काम की हों ये नहीं होता है कभी। इसलिए आपको जो बात लगे ये तो ज़्यादा हो गई, उसे थोड़ा साइड रख दो और इन सब तीन चार बातों पे फोकस करो तो सभी उसमें आ जाएगा। सार तो यही है, बाबा की मुरली में आ चुका है, सारी पॉइंट्स का सार है पॉइंट हो जाना, आत्मा हो जाना।
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ब्रदर जी, कि अपनी आदतों को संस्कारों को कैसे बदलें, तपस्या के बाद भी क्रोध आ जाता है बार बार।
किसी ने मुझे एक हंसी में बहुत ज़्यादा अच्छी बात कह दी, भाई कई लोग बहुत योग तपस्या करते हैं पर जीवन नहीं बदलता। मुझे तो लगता है राक्षसों ने भी तो बहुत तपस्या की थी, रावण ने बहुत की थी, बन गए रावण जी। इसलिए चारों सब्जेक्ट पे ध्यान देकर हमें चलना है। योग से यदि संस्कार नहीं बदल रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट जान लें योग करना आता नहीं है। जबरदस्ती ध्यान लगा रहे हैं बाबा में, ध्यान नहीं। पांच स्वरूपों के अभ्यास से, ज्ञान के चिंतन से हमारे संस्कार बदलते हैं। तीसरी, योग की शक्ति भी चाहिए, लेकिन पांच स्वरूपों का अभ्यास जो योग का एक हिस्सा है, और ज्ञान के सुंदर विचार, इनसे संस्कार बदलेंगे।
फाइनली लास्ट क्वेश्चन है पिता जी, कुछ प्रश्न तो रह गए हैं लेकिन सब शामिल हो गए। अव्यक्त मिलन की अनुभूति कैसे हो, हम क्या करें? केवल बाबा के दिन ये मिलन होता है या रोज ही ये मिलन हो सकता है?
मैं इसका ही तो उत्तर दिया शुरू में, इस पे तो क्लास थी सारी, वो तो हो गई है। रोज करें, जब चाहें करें, और हमने तीन चार बातें कराई हैं, और भी इस पे क्लास होते ही रहे हैं, वो आप सुन लेना। मिलन करना।
बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। पुनः हम भ्राता जी को एक हाथ की ताली से बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वास्तव में हमारी अवस्था ही हमारी सारी व्यवस्थाओं का आधार है, इसलिए जितनी अच्छी हमारी तपस्या होगी, जितना बाबा का साथ होगा, सब कुछ हमारे लिए सहज और सरल हो जाएगा। और आज शाम को बाबा मिलन की बहुत सुंदर अनुभूति का कार्यक्रम है, तो बहुत अच्छे से मौन रह करके अभी से जो अभ्यास भ्राता जी ने दिए हैं, मिलन मनाते रहेंगे और आज शाम के मिलन को अपने लिए बहुत सुंदर यादगार बना लेंगे। ओम शांति।